यरमिया अध्याय 35, यरमिया अध्याय 35 पद 1। योशिया के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य में यहोवा की ओर से यह वचन यरमिया के पास पहुंचा। हम अब और भी पीछे जा रहे हैं, ये सिदकया के राज्यकाल से पहले की बात है, ये यहोयाकीम के युग की भविष्यवाणी है। यरमिया अध्याय 35 पद 2 से लेकर 4 तक। रेकाबियों के घराने के पास जाकर उनसे बातें कर और उन्हें यहोवा के भवन की एक कोठरी में ले जाकर दाख मधु पिला। तब मैंने यजन्याह को, जो हबजन्याह का पोता और यरमिया का पुत्र था, और उसके भाइयों और सब पुत्रों को निदान रेकाबियों के सारे घराने के साथ लिया, और मैं उनको परमेश्वर के भवन में यिग्दलिय्याह के पुत्र हनान, जो परमेश्वर का एक जन था, उसकी कोठरी में ले आया, जो हाकिमों की उस कोठरी के पास थी, और शलूम के पुत्र डेवड़ी के रखने वाला मैसायाह की कोठरी के ऊपर थी। यहां बहुत से नाम हैं जिसमें हमें कोई वास्ता नहीं है, परंतु कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर ने कहा, रेकाबियों के घराने के पास जाकर उनसे बातें कर और उन्हें यहोवा के भवन की एक कोठरी में ले जाकर दाख मधु पिला, और यरमिया ने ऐसा ही किया। यरमिया अध्याय 35 पद 5 से लेकर 12 तक। तब मैंने रेकाबियों के घराने को दाख मधु से भरे हुए हांडे और कटोरे देकर कहा, दाख मधु पियो। उन्होंने कहा, हम दाख मधु ना पिएंगे, क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब ने, जो हमारा पुरखा था, हमको ये आज्ञा दी थी कि तुम कभी दाख मधु ना पीना, ना तुम, ना तुम्हारे पुत्र, ना घर बनाना, ना बीज बोना, ना दाख की बारी लगाना, और ना उनके अधिकारी होना, परंतु जीवन भर तंबुओं ही में रहना, जिससे जिस देश में तुम परदेशी हो उसमें बहुत दिन तक जीते रहो। इसलिए हम रेकाब के पुत्र अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, ना हम और ना हमारी स्त्रियां व पुत्र पुत्रियां कभी दाख मधु पीती हैं, और ना हम घर बनाकर उनमें रहते हैं। हम ना दाख की बारी, ना खेत और ना बीज रखते हैं। हम तंबुओं ही में रहा करते हैं, और अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार काम करते हैं। ये एक खानाबदोश समुदाय था। ये वैसे ही थे जैसे आज बद्दू समाज है। वे तंबुओं में रहते थे, वे दाख मधु नहीं पीते थे। बद्दू जन आज भी यरूशलेम और इसराइल के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसराइल की सरकार ने उनके लिए आवासों की व्यवस्था की है, परंतु उन्हें घरों में रहना रास नहीं आता है, इसलिए उनके मकान खाली पड़े हुए हैं। वे अपने तंबुओं को ही अच्छा मानते हैं। उनकी जीवन शैली बड़ी रोचक है। वे दाख मधु नहीं पीते, वे खेती नहीं करते, वे चरवाहे हैं, उनकी दाख की बारियां नहीं हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं और तंबुओं में रहते हैं। ये रकाबियों का सा जीवन रखते हैं। रकाबियों के किसी पूर्वज ने कभी कहा था, दाख मधु नहीं पीना, मकान नहीं बनाना, तंबुओं में रहना, दाख की बारी नहीं लगाना। वे उसका पालन करते आ रहे हैं। सैकड़ों वर्षों बाद भी आज भी वे उसकी आज्ञा नहीं टालते हैं। यरमिया अध्याय 35 पद 12 से लेकर 14 तक। तब यहोवा का यह वचन यरमिया के पास पहुंचा। इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यू कहता है कि जाकर यहूदा देश के लोगों और यरूशलेम नगर के निवासियों से कह, यहोवा की ये वाणी है, क्या तुम शिक्षा मानकर मेरी ना सुनोगे? देखो, योनादाब ही वो पुरखा था जिसने उन्हें ये आज्ञा दी थी। यरमिया अध्याय 35 पद 14। रेकाब का पुत्र योनादान ने जो आज्ञा अपने वंश को दी थी कि तुम दाक मधु ना पीना, सो तो मानी गई है। यहां तक कि आज के दिन भी वे लोग कुछ नहीं पीते, वे अपना पुरखा की आज्ञा मानते हैं। पर यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से कहता आया हूं, तो भी तुमने मेरी नहीं सुनी। यहां परमेश्वर बड़ी असंगत बात दिखा रहा है। देखो, यहां वे लोग हैं और मैं उन्हें दाक मधु दूंगा, परंतु वे नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि वर्षों पहले उनके एक पुरखा ने कहा था, मेरे पुत्रों, ना तो तुम दाक मधु पीना और ना ही अपनी संतानों को पीने देना। वे आज भी योनादाब की आज्ञा का पालन कर रहे। परमेश्वर कहता है, मैंने भी तुमसे कहा, परंतु तुमने नहीं सुना, तुमने मेरी बात नहीं मानी। देख, ये समुदाय एक सांसारिक पिता की आज्ञा का आज तक पालन करता है, परंतु तुम अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा नहीं मानते हो। यरमिया अध्याय 35 पद 15 से लेकर 17 तक। मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके ये कहने को भेजता आया हूं कि अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने काम सुधारो और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उनकी उपासना मत करो। तब तुम इस देश में जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुमको भी दिया है बसने पाओगे। पर तुमने मेरी ओर कान नहीं लगाया, ना मेरी सुनी है। देखो, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश ने तो अपने पुरखा की आज्ञा को मान लिया, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। इसलिए सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, जो इसराइल का परमेश्वर है, यो कहता है कि देखो, यहूदा देश और यरूशलेम नगर के सारे निवासियों पर जितनी विपत्ति डालने की मैंने चर्चा की है, वो उन पर अब डालता हूं, क्योंकि मैंने उनको सुनाया पर उन्होंने नहीं सुना, मैंने उनको बुलाया पर उन्होंने उत्तर ना दिया। इस कारण मैं उन सब पर विपत्ति डालूंगा। यरमिया अध्याय 35 पद 18 और 19। और रेकाबियों के घराने से यरमिया ने कहा, इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, इसलिए कि तुमने जो अपना पुरखा योनादाब की आज्ञा मानी, वरन उसकी सब आज्ञाओं को मान लिया और जो कुछ उसने कहा उसके अनुसार काम किया है, इसलिए इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश में सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सम्मुख खड़ा रहे। ये लोग आज भी है। परमेश्वर कहता है, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश को मैं सदा स्थिर रखूंगा, और वे आज भी है। ये रकाबी जो योनादाब की आज्ञा का पालन करते हैं, मकानों में रहने से इनकार करते हैं और दाग की बारी नहीं लगाते। मनुष्यों का ये वर्ग बड़ा ही रोचक है। परमेश्वर कहता है, वे बसे रहेंगे परंतु मेरी प्रजा नाश की जाएगी, वे तितर बितर किए जाएंगे, परंतु रकाबी वंश बसा रहेगा। ये सब बातें हमारी समझ के लिए लिखी गई थी। हमें इसराइलियों को देखकर ये नहीं कहना है, ओह, उन्होंने जो किया कैसा बुरा काम था, उन्होंने देखो परमेश्वर से कैसे मुंह मोड़ लिया था, उन्होंने उसकी आज्ञाओं की अवहेलना की, उन्होंने परमेश्वर के साथ बांधी हुई वाचा को तोड़कर कैसा घिनौना काम किया। कैसी निंदा की बात है कि उन्होंने मूर्ति पूजा की। क्या ये बहुत बुरा नहीं हुआ कि परमेश्वर को उन्हें दंड देना पड़ा? ये इसलिए नहीं कि हम उनकी आलोचना करें, ये इसलिए कि हम भी मूर्ति पूजा से दूर रहें और परमेश्वर की वाणी को सुनना सीखें और उसका पालन करना सीखें, कि हम अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर को खोजें, कि हम उसे प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। उनका उदाहरण अपनाकर हम परमेश्वर से दूर ना हो, परंतु हम परमेश्वर के लिए एक धर्मी जीवन व्यतीत करें जो परमेश्वर के सामने रहें। परमेश्वर आपके साथ हो और आपको आशीष दे और आपकी सहायता करें कि आप प्रभु को ग्रहण योग्य जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर के कामों को करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसकी संगति में रहें। परमेश्वर आपके साथ हो, आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करें और आपको मसीह यीशु में अच्छा समय दें।